समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, अ हार्टफेल्ट हेलो एंड गुड डे एवरीवन टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड नेहा, एंड वी आर ब्रिंगिंग यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। फर्स्ट देयर इज आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट टुडे। ऑल्सो वील प्रोवाइड रिपोर्ट्स, capsules and business updates as well, and in our last segment this will delve into the tributes. We'll pay our tributes to the personalities which are related to today, and all of this over the next 30 minutes. So make sure listeners that you stick around with us till the very end of the program. First we'll begin with the news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बुनियादी ढांचे की क्रांति के 11 वर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा, बुनियादी ढांचे में जीवन तेजी से सुगम और समृद्ध हो रहा है।
इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन सोर्स बाय $1 trillion सिंस मार्च, हाईएस्ट गेन अमंग टॉप 10 मार्केट्स ग्लोबली।
भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा वर्ष 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हुआ।
North India reels under extreme heat wave as temperature rises above 47 degrees Celsius in some parts of Punjab and Rajasthan.
ताइवान ने सिंगापुर के मालवाहक जहाज के 18 चालक दल के सदस्यों को बचाने पर भारत को धन्यवाद दिया।
Trump administration imposes limited curfew in Los Angeles amid ongoing unrest over immigration raids. And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, and which we will take a look at the developments which are taking place at national or global level. And today, listeners, me and Neha will talk about International Day of Play. Well, yes, we are celebrating something powerful, something joyful and essential for every child. This is the International Day of Play today. Well, we'll explore why play isn't just fun and games, it's a human right, a learning tool, and even a form of healing. We'll discuss about it in detail when we go along. And this year's theme, let me tell you that also, listeners, choose play every day. It's a reminder for all of us, which includes governments, schools, families, even businesses, to protect and prioritize play in children's lives. Well, yes, this song actually, this sets the theme right, and now we are pumped up, me and Neha, to talk about this International Day of Play. Well, yes, in the peak of summer vacation, as this is the time of summer vacation, let me delve into the memories back then, to the memory lane. Well, we and our friends, you know, we used to go out in the open without worrying about our mother's 6 p.m. curfew or on your teacher's surprise test. The narrow lane near your house, it transformed into a cricket pitch, and the walls of the houses on the lane are the boundaries, and you arch back to hit a six with your helicopter shot. And now let's come back to the year 2025. The same lanes are now filled with parked vehicles, and you look back in your room fiddling with your gadgets or playing mobile games or watching TV. This does sound familiar, right?
जी बिल्कुल शगुन। शगुन आइए बात करते हैं कि खेल इतना जरूरी क्यों है।
Yes.
खेल बचपन की सार्वभौमिक भाषा है, यह रचनात्मक भावनात्मक लचीलापन समस्या समाधान और सामाजिक कौशल का निर्माण करता है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। जी. वे बेहतर तरीके से संबंध बनाना सीखते हैं। खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य और यहाँ तक कि जीवन में शांति का भी माध्यम है।
Well, yes, Neha, rightly said. And if I talk about myself, I like playing because it makes me feel happy. And I get to play with my friends. Well, that joy is so real. And research also backs it up. A recent global survey shows that 71% of children say that play makes them happy. And 58% they say that it helps them make friends.
जी, लेकिन अगर आज के दौर की हम बात करें तो मानो बच्चों के लिए खेलने का अवसर खत्म सा होता जा रहा है। दुनिया भर में करीब 160 मिलियन बच्चे खेलने या सीखने के बजाय काम कर रहे हैं, कई अन्य संघर्ष क्षेत्रों में रहते हैं या अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। और शगुन, यह सिर्फ युद्ध क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, शांतिपूर्ण देशों में भी आउटडोर खेल बिल्कुल खत्म से होते जा रहे हैं। आज केवल 4 में से 1 बच्चा ही अपने दादा दादी की पीढ़ी की तुलना में बाहर निकलकर खेल रहा है। और शगुन, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल से आते ही अपने घर के पास के खेल के मैदानों में ही होती थी। हम बालू के किलों से रेत बनाते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, और ऐसे में हम किसी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती थी।
राइट राइट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू अगेन गो बैक टू द पॉइंट दैट आई मेड, दैट वेल वी आर बैक इन आवर रूम फिडलिंग विद आवर ओन गैजेट्स और इवन प्लेइंग मोबाइल गेम्स। आई मीन दैट्स नॉट फन। ऑफ कोर्स ऑल द गेम्स दैट यू मेंशन, दैट रेत का किला एंड स्टफ लाइक दैट, प्लेइंग विद बॉल, प्लेइंग क्रिकेट, दैट वाज जस्ट वंडरफुल आई थिंक। एंड आई थिंक वी शुड इनकल्केट मोर एक्टिविटीज, मोर फिजिकल एक्टिविटीज इन टू आर लाइफ एंड सच ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट वी आर डेलविंग इन टू। एंड इट इज आर जॉब टू हेल्प टूडेज किड्स मेक देयर ओन दीज ब्यूटिफुल मेमोरीज। एंड दिस ईयर द UN, UNICEF एंड UNESCO, दे आर को होस्टिंग अ हाई लेवल इवेंट एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क टू स्पॉटलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ play in policy making. Well, it's a huge step, it's a big step. The UN recognizes play as a fundamental right under Article 31 of the Convention on the Rights of the Child. But rights must be backed by action, like policies, training for teachers and also funding for play spaces in schools and also in communities.
जी, आइए खेल खेल में सीखने के बारे में बात करते हैं। खास तौर पर कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणाओं को तेजी से समझने और जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करती है। यह जिज्ञासा को बढ़ावा देती है और छात्रों को व्यस्त रखती है, खास तौर पर शुरुआती शिक्षा में। और यह सिर्फ बच्चों के शारीरिक ही नहीं बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने में मदद करती है।
राइट।
Fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition.
Well, yes, the International Day of Play, it is a global celebration and it should be recognized as that. And this also tells us about the vital role of play in the lives of children, as we are also discussing, and the people of all ages as well. Far from being a trivial pastime, play is a fundamental human need, especially critical to childhood development, as you were also focusing on mental health and also social cohesion. And this June 11, this day, it aims to mobilize individuals, communities, and also governments to preserve, also to promote and prioritize play in every aspect of life. Play, it brings families together, it builds communities, and also fosters tolerance and social inclusion. That play is not optional. It's essential for learning, also for healing, and also for thriving in all the domains of life. So whether you're a parent, teacher or policymaker, choose play every day.
जी बिल्कुल। श्रोताओं, अब बात करते हैं आप किस तरीके से बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को खेल का नेतृत्व खुद करने दें, उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, इसके साथ ही सुरक्षित सामुदायिक खेल स्थानों का भी समर्थन करें।
वेल यस, Cognitive skills such as memory, focus and critical thinking, they are improved by play. Also social and emotional skills like empathy, collaboration and self-control is there, along with very important physical coordination and health through active movement, which is encouraged by physical activities. Creative expression that nurtures innovation and imagination, and also play-based learning in education is very important to delve in. So remember, when we prioritize play, we build a better future. So happy International Day of Play. And don't forget, listeners, choose play every day.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या उनके पास विशेष है।
Well, yes, first, Ladakh. Heritage documentation is in progress in Ladakh to create a living archive of traditional oral histories, sacred sites and indigenous practices. It is a major documentation in digital as well as physical format and is targeted to produce 500 hours of video and audio documentation for digital archives on Ladakh and 20 volumes books. Our Leh correspondent has filed more on this from Leh.
Keeping pace with digital era, the centuries-old cultural, social, spiritual and historical heritage of Ladakh are being recorded in digital format along with the physical documentation. It is the first of its kind of attempt to record the heritage well of Ladakh by a government agency. The project is titled as Ladakh Norskal, which means the heritage of Ladakh, aimed to complete by April-May 2026. A team of multidisciplinary professionals, including architect, historian, archaeologist, web designer, and planner, will reach into every village and monasteries and people of 190 villages and hamlets of 94 panchayat and one local urban body of Leh district. These professionals have been assigned to work on producing book, high resolution of video archive, 3D mapping, drone survey, and dedicated website. During this documentation, all the heritage sites from the 50 years old are planned to record with aim to build a comprehensive heritage archive of Ladakh. Under the Ladakh Norskal project, Leh Hill Development Council is also working on creation of heritage website to serve as a digital hub for researchers, tourists and cultural enthusiasts. It will have a feature of an interactive map with a virtual tour to provide an immersive experience for the visitor. For Parikrama, this is Yang Chandolma from Leh Ladakh.
21 जून को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 1,00,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के 4,075 स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार 21 सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ वृहद स्तर पर योगाभ्यास प्रदर्शन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य और सशक्त जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी समेत अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के आयुष विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योग के प्रचार प्रसार के लिए 5,000 प्रशिक्षित योग ट्रेनर तैयार किए गए हैं। श्री मिश्र ने बताया कि प्रशिक्षित ट्रेनर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को योगाभ्यास करवाएंगे।
इस बार की तैयारियां विशेष है, चूंकि योग प्रशिक्षक और योग सहायक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं लोग, उनको मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने कहा है। वो मास्टर ट्रेनर प्रत्येक जनपद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, योग वेलनेस सेंटर के योग प्रशिक्षकों के द्वारा ऐसे संस्थाओं में बीच में जाकर वो सबको ट्रेन कर रहे हैं। नारी शक्ति को भी समर्पित होगा यह योग दिवस।
प्रदेश में योग प्रशिक्षकों और आयुष महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधकों द्वारा विभिन्न समितियों का गठन कर योग सप्ताह की व्यापक तैयारी की गई है। इन समितियों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालय समेत अन्य महाविद्यालयों में योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 4,075 स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के लिए मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में 3 और अन्य जनपदों में 2-2 योग पार्क चिन्हित किए गए हैं, ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग योगाभ्यास कर सकें। योग सप्ताह के अंतिम दिन 21 जून को पुरस्कार वितरण और प्रमाण पत्र वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of seva, sushasan and garib kalyan. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. Today, we discuss ease of living, how reforms and initiatives have made life simpler, more secure and more dignified for every citizen.
Improving the everyday lives of middle class has been a central focus of governance over the last decade. From housing and healthcare to urban mobility and digital access, the government has made sustained efforts to make life simpler, more secure and more convenient for the middle class. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, more than 1.16 crore houses have been sanctioned and nearly 93 lakh homes have already been completed, while the Smart Cities Mission has transformed infrastructure with over 93% of 7,545 approved projects completed. The metro network has quadrupled in a decade, growing from just 248 kilometers in 2014 to over 1,000 kilometers in 2025. While the Udaan scheme has made air travel affordable and accessible for the common people, connecting 88 airports through 625 routes. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has emerged as one of the world's largest publicly funded health assurance schemes, with over 41 crore Ayushman cards issued. The rise of Jan Aushadhi Kendras, now numbering over 16,000, has made quality medicines up to 80% cheaper and brought essential medicines within reach of the common citizen. Platforms like DigiLocker has reduced the need for carrying or submitting physical copies. More than 52 crore users have signed up on this, underlining the utility of the service. While the Umang app, with over 8 crore users, offers services from over 200 departments all in one place. Aadhaar, now covering over 141 crore citizens, continues to streamline welfare delivery and reduce leakages. Together, these initiatives ensures India's growing middle class lives with pride, convenience and confidence. Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
Vikasit Bharat ka Amritkaal. Seva, Sushasan, Gareeb Kalyan ke 11 saal.
पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च पर्वत शिखर संदकफू के इलाकों में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 15 जून तक एक विशेष अभियान पश्चिम बंगाल के वन विभाग तथा गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विश्व भर से आने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एक स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त, शुद्ध व सुरक्षित परिवेश प्रदान करना है। संदकफू भारत व नेपाल सीमा पर अवस्थित सिंगालीला नेशनल पार्क रेंज का सर्वोच्च शिखर है तथा करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। विश्व का यह एकमात्र पर्यटक स्थल है जहां से विश्व के 5 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 4 का सुंदर व मनोरम दृश्य एक साथ देखा जा सकता है।
इन दिनों गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन दार्जिलिंग पहाड़ को सुंदर, स्वच्छ व सुरक्षित बनाने में जुटा है। एक तरफ शहरों में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ क्षेत्र के सभी पर्यटक स्थलों को स्वच्छ करने व सजाने संवारने का काम तेज गति से किया जा रहा है। दार्जिलिंग पहाड़ के लोगों के लिए सबसे बड़ा जीविका का साधन भी पर्यटन है। इसी कड़ी में विगत 5 जून से 15 जून तक विश्व भर के पर्यटकों का बेहद लोकप्रिय तथा आकर्षणीय पर्यटन स्थल संदकफू को स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त तथा एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने हेतु विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल वन विभाग तथा गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन GTA की टीमें पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों व संस्थाओं की मदद से इस अभियान को चला रही है। यह अभियान सिंगालीला नेशनल पार्क के संपूर्ण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अभी तक कई क्विंटल प्लास्टिक व अन्य कचरा संग्रह किया जा चुका है जिसे पर्यटकों ने इधर उधर फेंका था। प्रशासन ने यह भी तय किया है कि इस क्षेत्र में कई चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे तथा भविष्य में आने वाले पर्यटक यदि इस क्षेत्र में प्लास्टिक या अन्य गंदगी फैलाते हैं तो उन्हें नियमानुसार दंडित किया जाएगा व जुर्माना भी लगाया जाएगा। समुद्र तल से करीब 6,000 से अधिक की ऊंचाई पर अवस्थित माने भंजांग जो सिंगालीला रेंज का प्रवेश द्वार है, यहाँ से संदकफू तक के रेंज की सफाई की जा रही है। इस अभियान के बारे में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के कार्यकारी निदेशक पर्यटन विभाग श्री अरिजीत मित्रा ने बताया,
GTA has the thing is that GTA has taken an initiative, a plan of making the entire zone of Singalila National Park in within which Sandakpur also comes, not only a plastic free zone. Green plastic free is just one of the ingredients, one of the components of this entire thing. The main thing is to make this entire place a safe place for all.
यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों, जैव विविधताओं तथा सुंदर रमणीय वादियों से भरपूर्ण है। यहाँ के प्रकृति की सुंदरता व ट्रेकिंग का आनंद लेने प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में विश्व भर से पर्यटक खींचे चले आते हैं। दुनिया का यह एकमात्र स्थल है जहाँ से विश्व की सर्वोच्च 5 पर्वत शिखरों में से 4 माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से व माकालू के मनोरम दृश्य एक साथ देखे जा सकते हैं। यहाँ जानवरों में रेड पांडा तथा वनस्पतियों में रोडोड्रम, व्हाइट ऑर्किड व सिल्वर पर्स देवदार के मनमोहक छटाएं एक साथ देखी जा सकती है। इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, first talking about cricket. In the Cricket World Test Championship final, Australia were 58 for 3 in 21 overs against South Africa at the Lord's Cricket Ground when reports last came in. Earlier, South Africa won the toss and elected to bowl first. Now we'll delve into business updates. The benchmark domestic equity indices today ended with marginal gains, tracking positive cues from Asian markets. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 123 points to close at 82,515. The National Stock Exchange Nifty 50 added 37 points to settle at 25,141.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember the legendary freedom fighter Ram Prasad Bismil, who was born on the 11th of June 1897 at Shahjahanpur, Uttar Pradesh. He is well known for being a part of the Mainpuri conspiracy in 1918 and the Kakori conspiracy in
1925.
Bismil was a patriotic poet and wrote in Hindi and Urdu using the pen names Ram, Agyad and Bismil. He immortalized the poems Sarfaroshi Ki Tamanna, Man Ki Leher and Swadeshi Rang as a war cry against the British Raj. Bhagat Singh praised him as a great poet-writer of Urdu and Hindi, who had also translated the books Catherine and Bolshevikon Ki Kartu. Bismil's friendship with fellow revolutionary Ashfaqullah Khan Warsi is legendary. The two, along with Roshan Singh, were executed on the 19th of December 1927 for their revolutionary activities. Ram Prasad Bismil's last message, which he wrote on the 16th of December 1927, was published in the magazine Kirti.
The time of execution is fixed for 6:30 a.m. on the 19th of December. Nothing to worry. I shall be reborn again and again due to God's grace, and my aim will be to ensure complete freedom for the world, that nature's gifts should be equally shared by all, and no one shall rule others. Everywhere, people should have their democratic institutions. My only request to countrymen is that if they had even an iota of sorrow at our deaths, then with whatever means, they must establish Hindu-Muslim unity. That was our last wish, and this only can be our memorial. Whatever I am saying, same is the opinion of Sri Ashfaqullah Khan Warsi. My request to the youth is that, till many people get educated, don't pay attention to secret organizations. If they have the desire to serve the country, they should work openly. Just listening to empty rhetoric and imagining green pastures, they should not put their lives in trouble. We also remember independence activist Rudra Pratap Singh, who was arrested on the 11th of June 1941 for taking part in the individual satyagraha.
Rudra Pratap Singh was born in 1916 in district Narsinghpur, Madhya Pradesh. He was sentenced to 6 months imprisonment for taking part in the individual satyagraha under the Defence of India rules. He was imprisoned again for taking part in the Quit India movement and detained in Narsinghpur, Nagpur and Jabalpur jails between June 1943 and March 1945. He was released to avoid his custodial death, but soon after his release, he died of tortures and broken health.
We also remember Martyr Sikandar, who took part in the First War of Independence in 1857. Sikandar took part in the resistance against the company rule and also inspired others to join hands with the independence activists. He was caught while defending against the British attacks and charged with sedition and rebellion against the British. Sikandar was sentenced to imprisonment for 10 years with labour in iron. He died in the Andaman Islands on the 11th of June, 1859. We salute the great son of the soil.
श्रोताओं, आज जयंती है कबीरदास की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनके दोहों में शब्दों की सरलता और भावनाओं की गहराई है।
संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करे। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है।
Sant Kabirdas's birth anniversary is a vibrant celebration of his enduring legacy and transformative teachings. Kabir's life and philosophy, they serve as a beacon of mutual respect and understanding, making his presence deeply significant in India's spiritual and also cultural fabric. And listeners, let's listen into one of his creations now.
आज पुण्यतिथि है छवि बिस्वास की। छवि बिस्वास भारतीय अभिनेता थे जो मुख्य रूप से तपन सिन्हा की काबुलीवाला और सत्यजीत रे की फिल्मों जलसागर, देवी द गॉडेस और कंचनजंगा में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम सचिंद्रनाथ था, लेकिन उनकी मां ने अपने बेटे का उपनाम छवि रखा और यह नाम उनके जीवन और करियर में हमेशा बना रहा। उन्होंने अशोक, परिणीता, मातिरघर, दुई पुरुष, विराज बौ और मंदाना जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं छवि बिस्वास की फिल्म दादा ठाकुर से ये गीत। Well, listeners, today we are also remembering Mihir Sen, Indian long-distance swimmer and also a lawyer. Mihir Sen was the first Indian swimmer who crossed the English Channel from Dover to Calais. In 1959, he was conferred by Padma Shri and Padma Bhushan, followed in the year 1967. Well, today, listeners, we are also remembering Randolph Dennard Ornette Coleman, trumpeter, violinist and also a composer. And I have specifically picked a very beautiful song by him. This is actually an instrumental presentation by him, so listen in. Thank you. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का। नमस्कार।